నమో భగవతే రామచంద్రాయ. ఓం నమో భగవతే రామచంద్రాయ. ఓం నమో భగవతే రామచంద్రాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాఖయా చక్షురోన్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురుః శ్రీయుతః పదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాం సాగ్రజాతాం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధోర్జగత్పతి గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీనిది నామినే. నమస్తే సారస్వతీదేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. आज जब हम राम जन्मभूमि की ओर अग्रसर हो रहे थे तो एक छोटा सा साक्षात्कार हुआ. आप लोगों ने कल्पना की थी कि आपको इतने सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा. हाँ, कोई अंदाजा था आप लोगों को? तो रास्ते में इतने सारे सिक्योरिटी चेक हुए और वो लोग सब क्या चेक कर रहे थे कि आपके पास कोई डेंजरस या हानिकारक वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर रामलाला राम जन्मभूमि का ये जो छोटा सा मंदिर, एक कपड़े का मंदिर बनाया हुआ है, टेंट है, टेंट के अंदर उनके दर्शन के लिए हमें इतने सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है और सब परख रहे हैं क्या आप योग्य हो कि नहीं, दर्शन लेने के योग्य हो कि नहीं। तो सोचिए कि भगवान के नित्य साकेत वैकुंठ धाम में जाने के लिए कितने सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा हमें। और यहां के सिक्योरिटी को तो हम चकमा भी दे सकते, परंतु भगवान के नित्य साकेत वैकुंठ धाम वहां पर हम कोई चकमा नहीं दे सकते। जैसे ये लोग चेक कर रहे थे कि क्या आपके पास कंघी, सेलफोन, घड़ी, पान तंबाकू, हाँ वो सब अनाउंस कर रहे थे, बीड़ी सिगरेट, सब बाहर निकालिए, सब बाहर निकालिए, अर्थात अनावश्यक चीजें पीछे छोड़िए, अननेसेसरी, ये सब भगवान के दर्शन में बाधा लाएंगे या उनके सिक्योरिटी में बाधा लाएंगे। तो अननेसेसरी और अनावश्यक चीजों को पीछे छोड़ना है, उसके बावजूद अलग अलग पड़ाव पर सिक्योरिटी चेक होगा। और अननेसेसरी अर्थात अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो सारे हमें उनसे मुक्त होना है, तब जाकर भगवान के धाम में अनुमति की संभावना है। तो हमारे आज सुबह के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो अयोध्या नगरी जिसका निर्माण हुआ स्वयंभू मनु ने किया, विश्वकर्मा उन्हें छुट्टी दे दी और स्वयंभू मनु वो स्वयं इस अयोध्या नगरी का निर्माण किए। तो महत्व कितना दिया उन्होंने स्वयं ने कि यहां पर कौन अवतरित होने वाले हैं। और भगवान के अवतरित होने से कई सैकड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण किया स्वयंभू मनु ने। तो अब जो हमारे रामायण के टीकाकार हैं, हमने सुबह सुना कि दशरथ महाराज के मंत्री आमत्य, उसमें से जाबाली ऋषि, उन्होंने अयोध्या भूमि के जो पांच तत्व बताए, सबसे पहला तत्व जिस तत्व से ये अयोध्या नगरी बनी याद है, यज्ञस्व, कि यज्ञ अर्थात समर्पण, जो कुछ हम करें वो शुद्धिकरण के लिए हो, किसके, पूरे समाज के, पूरे राज्य के, पूरे देश के, पूरे विश्व के शुद्धिकरण के लिए हो। जब हम यज्ञ की बात करते हैं, जैसे कि हमारे तकरीबन सभी ग्रंथों में यज्ञ, दान और तप, इन तीन चीजों के विषय में बताया गया। तो जब हम यज्ञ की बात करते हैं, जैसे सुबह हमने कहा कि यज्ञ में आहुति जीत दी जाती है, और आहुति देने का अर्थ है कि उन जो तत्वों के द्वारा, उन सामग्रियों के द्वारा हम हमारी चेतना को अर्पित कर रहे हैं। इसलिए जाबाली ऋषि कहते हैं कि अयोध्या नगरी का निर्माण, उसकी बुनियाद इन तत्वों से, जब तक हम ये समर्पण का भाव अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी वो हमारा हृदय नहीं बनेगी। तो इसलिए रिश्तों में समर्पण, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के प्रति समर्पण, जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के प्रति समर्पण, और किस प्रकार का समर्पण, ताकि हमारे समर्पण से जो सामने वाला व्यक्ति है या जो देश है या जो समाज है उसका भला हो, और उसके साथ साथ फिर उसमें हमारी भलाई भी छिपी हुई है। यज्ञस्व के पश्चात जो दूसरा तत्व जिससे अयोध्या नगरी बनी हुई है वो कौन सा? दानस्य। जैसे हम सुबह बोल रहे थे कि कैसे इस नगरी में रहते हुए कैकेयी के मन में ऐसी दानशूरता पैदा हो गई कि अपना महल, हमने देखा आज का महल देखा आप लोगों ने, तो ऐसा, अब ये तो बाद में बनाया गया लेकिन ओरिजिनल यहां पर जो बना था वो सोने का, तो आप कल्पना कीजिए कि जो भी आज हमने देखा वो तो केवल ईंट पत्थर सीमेंट का होगा ये सब, परंतु ओरिजिनल महल सोने का बना हुआ, और कैकेयी ने वो राम और सीता को दे दिया भेंट के रूप में। क्यों? क्योंकि इस नगरी का प्रभाव, ये जो दूसरा तत्व अयोध्या नगरी का, ये कैकेयी के ऊपर प्रभाव कर रहा था, दानवीरता दानशूरता। तो दानस्य। अब हम आते हैं तीसरे तत्व के ऊपर। अयोध्या नगरी जाबाली ऋषि के अनुसार बनी हुई है दीक्षस्व। इस पूरी अयोध्या नगरी में सारे नागरिक, सारे अयोध्यावासी दीक्षित थे। दीक्षा का अर्थ है कि जिसको कहते हैं द्विज, कि एक जन्म उनका हुआ, ये शारीरिक जन्म हुआ, उसके पश्चात फिर आध्यात्मिक रूप से उन्हें जो संस्कार प्राप्त हुए, तो दूसरा जन्म अर्थात दीक्षा, जिसको हम हमारे इस्कॉन के भाषा में इनिशिएशन कहते हैं, कि अब हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। तो बताया जाता है कि सारे अयोध्यावासी वो हर दिन किसी न किसी प्रकार का व्रत, किसी न किसी प्रकार का तप हर दिन किया करते थे, किसी न किसी देवी देवताओं की आराधना, पूजा इत्यादि, ये सब हर दिन चलता रहता, और किस लिए? प्रभु श्री राम के लिए। एकमात्र उनका केंद्र था कि जो भी हमें इसका श्रेय मिले वो प्रभु श्री राम को जाए। जब रामचंद्र जी के वनवास की घोषणा हुई, सबको जब पता चला कि जिन्हें हम हमारा राजा राजा के रूप में अब देखने वाले थे, वही उन्हें 14 साल का वनवास हो गया है, तो उस दिन जब निकले, उनकी वनवास की यात्रा जो प्रारंभ हुई, वो एक ऐसा दिन था, उसकी हम हमारे श्रीमद् भागवतम क्लास में भी चर्चा किए हैं, कि जैसे कि पूरी अयोध्या नगरी स्मशान भूमि बन गई। तो जो मंदिरों में सारे पूजा पाठ हुआ करते थे अयोध्या नगरी में, भगवान के वनवास के दिन सब बंद हो गए। यहां तक कि जो गर्भवती स्त्रियां थीं, उनके शिशु जिस दिन रामचंद्र जी को वनवास हुआ, कई शिशु पैदा हुए उस दिन यहां अयोध्या में, तो उनकी माताएं अपने शिशु के जन्म के पश्चात अपने शिशु को कोसने लगी। कल्पना कीजिए कि एक मां के लिए उसके पूरे जीवन का सबसे खुशहाल या खुशामदीन दिन कौन सा होता है? जब उसका शिशु पैदा होता है, गर्भवती स्त्री के लिए, एक मां के लिए। परंतु ये कोसने लगी अपने ही बालक को देखकर कि तू कौन से मनहूस दिन पैदा हुआ। क्या कहती थी वो, कौन से मनहूस दिन तू पैदा हुआ। आगे चलकर यदि कोई पूछेगा ये तुम्हारे बालक का जन्मदिन कौन सा है, तो मैं क्या मुंह से बोलूंगी कि ये कौन से दिन जन्मा, जिस दिन हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को वनवास मिला उस दिन ये जन्मा। तो वो अपने ही अभी नवजात बालक शिशु को कलमुहा बोल रही थी ये माताएं, मनहूस बुला रही थी। तो जितना भी जो भी कोई वो पूजा पाठ इत्यादि किया करती, ये रामायण में बताया गया है कि सारे अयोध्यावासी सारी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन उसका श्रेय वो प्रामाणिक रूप से पूजा किया करते थे और उसका पूरा श्रेय वो देते थे प्रभु श्री राम को। इसलिए दशरथ महाराज, उन्हें राज्य करने में बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि पूरी जो प्रजा थी वो इतनी धर्मपरायण थी, परफेक्ट वर्णाश्रम का बैलेंस महाराज दशरथ के राज्य में दिख रहा था। परफेक्ट वर्णाश्रम का बैलेंस, जितने भी अलग अलग राज्य अयोध्या नगरी पूरे कौशल के जिसके ऊपर दशरथ महाराज राज्य कर रहे थे, तो हरेक राज्य अपने राज्य के अंदर उन्होंने अपनी व्यवस्था इस प्रकार से बनाई हुई थी, जैसे कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो चार वर्ण है और चार आश्रम है उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। आजकल तो कलयुग में ये सब कुछ भी नहीं देखने मिल रहा है, इसलिए कलयुग में तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये वर्णाश्रम धर्म कहीं दिखेगा। दूर दूर तक कोई आसार नहीं है जो दैवी वर्णाश्रम है उसके। हाँ, आसुरी वर्णाश्रम वो अच्छी से दिख रहा है सब जगह पर, वो एक अलग विषय है। तो ये दैवी वर्णाश्रम का बैलेंस कैसे था महाराज दशरथ के हरेक उनके राज्य में, इस कौशल देश के, यदि एक राज्य में मान लीजिए कि पुरोहित ज्यादा हो गए और किसान कम है, तो जिस राज्य में पुरोहित कम है तो इस राज्य से दूसरे राज्य में जो पुरोहित होते थे वो अपने आप अपना सारा बोरिया बिस्तर पैक कर वो दूसरे राज्य में चले जाते थे जहां पर पुरोहितों की कमी है और जरूरत है। यदि वहां पर व्यापारी या किसान वैश्य इत्यादि उनकी कमी है, जहां पर भी वो कमतरता होती उस राज्य को जाकर वो लोग बैलेंस करते थे। क्यों और कैसे? क्योंकि सभी दीक्षित थे, क्योंकि सभी वैदिक संस्कार में दीक्षित थे और वो अपना महत्व जानते थे, वर्णाश्रम का महत्व जानते थे। आजकल कलयुग में क्या देखा जाता है कि कोई बड़ा शहर है, बंबई जैसा शहर या कोई भी शहर, या पूना या अभी नासिक भी ले लीजिए, कोई भी शहर है जो कि भौतिक रूप से समृद्ध हो रहा है। यदि हम ये शब्द इस्तेमाल करें समृद्धि, तो यदि भौतिक रूप से समृद्धि हो रही है किसी भी ऐसे शहर की, और भौतिक समृद्धि का अर्थ क्या है, जहां पर इंद्रिय भोग बहुत आसानी से मिल जाए। इसलिए आप देखो कि लोग ये बड़े बड़े शहरों में जाकर सेटल होना क्यों चाहते हैं, अमेरिका में जाके सेटल होना क्यों चाहते हैं, कोई भी देहात में क्यों नहीं सेटल होना चाहता, बड़े बड़े बंबई जैसे शहरों में क्यों सेटल होना चाहते हैं और ऐसी गंदगी में रहते हैं। कई तो अच्छे खासे हमारे महाराष्ट्र के आसपास के खुली हवा और शुद्ध पानी ये सब जगह को छोड़कर वो बंबई जैसी गंदगी में रहते हैं, जहाँ पर सब जगह कूड़ा करकट है, बीमारियाँ हैं, सब प्रकार का प्रदूषण है, हवा में, ध्वनि में, सब प्रकार, क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर इंद्रिय भोग के साधन पैसा सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा, जिससे इंद्रिय भोग तो मिलेगा, तो इंद्रिय भोग के साधन उसकी सहूलियत है, इसलिए। तो ये कौन सा विचार है? ये आसुरी विचार है। परंतु दैवी वर्णाश्रम का विचार अयोध्या नगरी में हर एक नागरिक क्या देखता था कि इस राज्य में यदि वर्णाश्रम का बैलेंस नहीं है तो ये राज्य आध्यात्मिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी उस राज्य के सरपंच इत्यादि हुआ करते थे और उन सब की जो भी इष्टगोष्ठी होती थी तो उन सब में वो यही डिस्कस करते थे कि आपके राज्य में वर्णाश्रम का बैलेंस कैसे चल रहा है, आपके राज्य में वर्णाश्रम का बैलेंस कैसे चल रहा है, और यदि नहीं है तो ये उस राज्य की मदद करेगा, वो इस राज्य की मदद करेगा। इसलिए अयोध्या नगरी में जो एक मुख्य भाव सारे प्रजाओं में, सारे नागरिकों में क्या था? सहकार्य, सहकारित्मा, कि उनके अंदर एक दूसरे के प्रति कैसे आपको सहयोग देना है दूसरे का। इसलिए महाराज दशरथ वो कोई नियम नहीं बनाते थे, महाराज दशरथ लॉ मेकर नहीं थे। और ये है असली वर्णाश्रम कि जो राजा होता है, राजा वो लॉ मेकर नहीं होता है, वो लॉ कीपर होता है, कि कानून जो है, कानून को कैसे बरकरार रखा जाए पूरे राज्य में। तो महाराज दशरथ इन सारे राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठते थे और ये लोग सब अपने अपने राज्यों का निर्णय लेकर महाराज दशरथ को बताते थे, सुझाव देते थे, और फिर सारी नीतियां बनती थी और महाराज दशरथ का उत्तरदायित्व होता था कि इन नीतियों का ठीक प्रकार से पालन हो रहा है, इसकी निगरानी रखना, बस इतना। प्रभु श्री राम ने भी आगे चलकर यही किया। प्रभु श्री राम जब निकले, जब उनको उत्तरदायित्व मिला, और हालांकि वनवास में भी, उससे पहले जब वनवास से पहले जब विश्वामित्र मुनि के साथ निकले तो रास्ते में उन्होंने बहुत से अलग अलग जो राज्य कौशल देश से संबंधित थे, जिनको कहते हैं एलाइज, उनसे संबंधित थे, उनको किसी भी प्रकार की समस्या थी तो रामचंद्र जी उनकी समस्या दूर करते, या कोई शत्रु पक्ष उनको परेशानी दे रहा है तो शत्रु पक्ष का उनको पराजित करने के बाद वहाँ का जो व्यक्ति, उस राज्य का, उस प्रांत का व्यक्ति, उसी को राजा बनाते, उसे महाराज दशरथ के राज्य में नहीं लेते, उसी को राजा बनाते। और इस प्रकार से, क्योंकि वो वहां की संस्कृति को जानता है वो व्यक्ति, वो वहां की भाषा को जानता है, रहन सहन को जानता है, इसलिए उसे वहां का राजा बनाते थे प्रभु श्री राम। और वही परंपरा महाराज दशरथ से उन्होंने प्राप्त की थी, महाराज दशरथ भी इसी परंपरा को पालन करते थे। इसलिए परफेक्ट डेमोक्रेसी ये अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के समय दिख रही थी। परफेक्ट डेमोक्रेसी इसे कहते हैं जब ये वर्णाश्रम का बैलेंस ये सब जगह पर दिखे। इसके ठीक विपरीत था रावण। सो हमने क्या चर्चा की, एक है अयोध्या नगरी की संस्कृति और एक है रावण की संस्कृति। तो रावण क्या किया करता था, रावण अपने पूरे राज्य में, पूरी लंका में सब शांति से, खुशहाली से रहें, इसके लिए रावण सारे नागरिकों को इंद्रिय भोग की घूस दिया करता था। जैसे हम देखते हैं इलेक्शन के समय बहुत से ऐसे जो देहात या निचले दर्जे के लोग हैं, उस तबके के लोग हैं, उनका वोट बैंक लेने के लिए कई राजनीतिक क्या करते हैं, वो लोग उनके पास दारू पहुंचाएंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि क्रेट के क्रेट दारू के ऐसे ऐसे गांवों में पहुंचाए जाते हैं शराब के, और कई बार अंग्रेजी शराब अगर उनको नहीं मिली है तो वोट लेने के लिए। ये है रावण की नीति। रावण यही किया करता था लंका के अंदर। रावण सबको चार नियम कैसे वो तोड़ तोड़ कर, मतलब जिसको कहते ना सरकार मान्य, कई बार बोर्ड लगाते ना ठेका देशी दारू, उसके ऊपर बोर्ड लगा सरकार मान्य है, तो वैसे रावण उसको सरकार मान्यता दिलाकर सबको इस तरीके से खुशहाल रखता था ताकि कोई भी मेरे विरुद्ध न जाए। जैसे हमने कहा कि महाराज दशरथ जो भी निर्णय लेते थे, उनका जो मुख्य मंत्रिमंडल था उनसे मंत्रणा लेते थे, और फिर जो अमात्य थे उनसे मंत्रणा लेते थे, उसके पश्चात किसी निर्णय पर आते थे। और यदि एक भी मंत्री वो महाराज दशरथ से सहमत नहीं या बाकियों से सहमत नहीं, तो कई बार उनकी मीटिंगें होती कि क्यों ये सहमत नहीं, फिर इनका प्रस्ताव सुना जाता, फिर इनके तर्क सुने जाते, और उसके पश्चात फिर जिसको कहते कंसेंसस पे आते थे ये लोग। रावण क्या करता था, रावण जब भी अपने मंत्रिमंडल को बुलाता था तो ऐसे मंत्रियों को बुलाता था जो पहले से ही रावण से सहमत रहते थे। एक बार विभीषण को बुलाया और विभीषण ने क्या कहा रावण को, रावण सीता को जो तू अगवा करके लाया है और यहां पर बंदी बनाकर रखा है, तूने क्या किया है। विभीषण उदाहरण देते हैं रावण को, कहते हैं कि रावण तूने एक तेज धार वाली तलवार है उसके ऊपर शहद लगाया और उसे तो चाटने की कोशिश कर रहा है। देखो उदाहरण क्या दिया विभीषण ने, कि कोई बहुत तेज धार वाली तलवार और उसे पूरा शहद से ओतप्रोत कर दिया है, और ऐसे शहद को चखने के लिए उस तलवार पर जीभ लगाकर कोई चाटने की कोशिश करे तो क्या हो। तो विभीषण ने यह पहला उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण विभीषण देते हैं कि रावण सीता को यहां पर कैद कर जो तुमने रखा है, ये उसी प्रकार है जैसे कि कोई माला पहनना चाहता है और अपने आप को सुंदर बनाना चाहता है माला पहनकर, तो उसने एक जहरीले सांप को माला के रूप में गले में पहन लिया तो क्या होगा, वो सांप डसने वाला है। तो जब रावण ने पहली बार विभीषण के मुख से ये सब नसीहत, जिसको कहते हैं ना, ये नसीहत सुनी, तो रावण अगली बार से किसी भी मीटिंग में विभीषण को नहीं बुलाता था। विभीषण नहीं होना चाहिए और सारी मीटिंग मेरी कौन होने चाहिए, यस मैन वाले लोग होने चाहिए, कि रावण बोले कि सीता के साथ मैं ये करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं, हां सरकार जो आप कहें यही सत्य, ऐसे ही करना चाहिए। और उल्टा वो दो चार और चढ़ाकर बोलते थे कि रावण क्या, और रावण अपने मंत्रिमंडल के सामने किस चीज का गुणगान करता था, सारे उसके जो कुकर्म, जितने सारे उसने कुकर्म अभी तक किए हैं, उसका जो बायोडाटा, इसको लूट लिया यहां पे इसके साथ गद्दारी कर ली, उसकी इज्जत लूट ली, ये सारा जब अपने मंत्रिमंडल को सुनाता, जिनको चुनिंदा उसने रखे हुए थे, ये सब उसका गुणगान का, वाह वाह ऐसा होना चाहिए, देखो क्या पराक्रम किया, उसकी इज्जत लूट ली, क्या पराक्रमी है हमारा ये। तो जब कोई नेता या लीडर वो इस प्रकार की प्रजा को बनाएगा तो होगा क्या कि गुरु चोर चंडाल चेला नरक में जाए ठेलम ठेला। तो ये ऐसी स्थिति हो गई। परंतु यहां जब जाबाली ऋषि कहते हैं कि दीक्षस्व कि सारे लगे हुए थे केवल आध्यात्मिक समृद्धि कैसे आए हर एक राज्य में और ये सारे राज्य को कौशल देश के एक साथ आकर कैसे इस नगरी को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाए। तो ये तीसरा तत्व जिससे अयोध्या नगरी बनी हुई थी। चौथा तपस्या। जाबाली ऋषि कहते हैं कि तपस्या से ये पूरी भूमि बनी हुई कि सब कुछ समृद्ध। ऐसा नहीं कि महाराज दशरथ के पास भौतिक रूप से समृद्धि नहीं थी या ऐश्वर्य नहीं था, बहुत समृद्धशाली और ऐश्वर्यशाली अयोध्या नगरी थी। परंतु जानबूझ तपस्या का अर्थ क्या होता है कि जो स्वेच्छा से अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए और इसका श्रेय किसी और को मिले उसके शुद्धिकरण के लिए जो तपस्या की जाए वो यज्ञ दान और तप की श्रेणी में वो आता है। तो इसलिए सभी उसी भाव में इस अयोध्या नगरी में अपना जीवन जिया करते थे कि हमें एक तप का जीवन जीना है, एक तपश्चर्या का जीवन जीना है। तो इसके पश्चात जो पांचवा अंतिम तत्व जिससे अयोध्या नगरी बनी हुई थी वो है त्यागस्य। सबसे पहले था यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है कि कैसे हम अपने आप को समर्पित करें, जिसको कहते हैं जिम्मेदार बने। एक और अर्थ यज्ञस्व का बताया गया है कि कैसे हम जिम्मेदार बने। इसलिए समाज में एक है कि समाज को खुश रखना, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं, बोलते हैं ना आशीर्वाद भी क्या देते हैं, खुश रहो। अक्सर क्या आशीर्वाद को पैर छूने जाता है तो आशीर्वाद क्या देते हैं, तुम खुश रहो। तो एक तरफ है खुश रहना और दूसरी तरफ है जिम्मेदार होना। दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है? जिम्मेदार होना। क्योंकि जब आप जिम्मेदार होगे कोई जरूरी नहीं कि उसके अंदर आपको खुशी मिलेगी या नहीं। कई बार आपको आपकी खुशी को मारना पड़ेगा जिम्मेदार होने के लिए। परंतु केवल यदि एक परिवार, एक खानदान या एक समाज केवल यदि खुश होने के पीछे अपना जीवन जिएगा तो ये अधिकांश देखा गया है कि वो समाज, वो संतान, वो खानदान, वो परंपरा वो गैर जिम्मेदार जीवन बिताते हैं अपना। इसलिए जब हम यज्ञस्व की चर्चा कर रहे हैं तो वो जिम्मेदार होने के लिए बताया गया है। और यहां जो अंतिम तत्व जिससे अयोध्या नगरी बनी हुई, त्याग, त्यागस्य, कि उस समर्पण को डिटेल में कैसे किया जाए उसके लिए त्याग। जैसे हमने सुबह त्याग की थोड़ी सी चर्चा की थी कि प्रभु श्री राम स्वयं उन्होंने जो त्याग दिखाया, मतलब कौन बेटा ये बात को स्वीकार करेगा कि उसके पिता ने कोई वचन दिया था इनकी सौतेली मां को, कौन सौतेली मां को वचन दिया, पता नहीं कब दिया, कहां दिया, अकेले में दिया होगा। हाँ, कोई अभी का कोई बेटा होता तो बोलता भाई तो मैं क्या करूं, आपने आपकी चहीती पत्नी को, रानी को जो भी वचन दिया होगा, आप अपना सलटाओ उसके साथ जो भी करना है, मुझे क्यों घसीट रहे हो। और ठीक है, मान लिया कि दशरथ महाराज ने पहले कह दिया कि ठीक है आपको राजा बनाया जाएगा, फिर बाद में वो मुकर गए कि नहीं नहीं होगा, हालांकि वो अपने मुख से नहीं कह पाए, कई कई ने ये सब कुछ कहा, तो ठीक है मुझे राजा नहीं बना रहे, भरत को बना रहे हैं, वहां तक भी ठीक, मुझे वनवास क्यों भेज रहे हैं? अरे मैं रह लूंगा भरत के अधीन, अगर रहना है तो ऐशो आराम को क्यों छोड़ूं, अच्छे खासे कनक महल को क्यों छोड़ूं? तो क्या त्याग, और जिसको कहते हैं ना उफ भी नहीं किया, रामचंद्र जी ने उफ भी नहीं किया कि जिस भाव से जब उनको बुलाया गया महाराज दशरथ या जो कैकेयी ने जब दूत भेजे कि बुलाओ अभी बुलाओ, और रामचंद्र जी को जब भी दशरथ बुलाते थे तो एक समय होता था, और वो समय के अनुसार, क्योंकि वो कोई साधारण सबसे ज्येष्ठ पुत्र और पूरे अयोध्या में इतने आदरणीय, इसलिए जब महाराज दशरथ ने अनाउंसमेंट किया, कौन सा अनाउंसमेंट, कि राम को मैं राजा बनाना चाहता हूं, तो आप जानते सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन हुए अयोध्या में, सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन हुए, अयोध्या की स्त्रियां। अब आप पूछोगे क्यों अयोध्या की स्त्रियां क्यों प्रसन्न हुई, क्योंकि दशरथ उनकी कितनी पत्नियां थी, 353, केवल तीन पत्नियां नहीं थी, टोटल काउंट कितना था उनका, 353 का काउंट था महाराज दशरथ की पत्नियों का। और उसके पीछे हम जानते हैं, कथा भी सुनाई है हमने, कि क्यों ये 353 फिगर आए, कि परशुराम जी उन्होंने जो व्रत लिया था कि क्षत्रियों को वो इस पृथ्वी को क्षत्रिय रिक्त कर देंगे, परंतु उसके साथ साथ उनका नियम ये था, अजीबो गरीब नियम था परशुराम जी का भी, उन्होंने नियम बनाया था कि जो भी क्षत्रिय राजा विवाह के मंडप में बैठा हुआ है, विवाह कर रहा है, उसको वो नहीं छूते थे, उसके प्रति सहानुभूति, वो जो दूल्हा वो दूल्हे के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाते थे, पता नहीं क्या उनका ये गणित था, लेकिन उस दूल्हे के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाते थे, पता नहीं क्यों, कि पहले ही अभी जा रहा है ये बलि का बकरा बनने, तो फिर इसलिए सहानुभूति दिखाते होंगे शायद, अब और क्या मारूं इसको। तो महाराज दशरथ को जब भी समाचार मिलता, और उनके दूत सब जगह, जैसे ही समाचार मिलता है कि परशुराम जी आ रहे हैं, फैजाबाद तक पहुंच गए, तो तुरंत एक अयोध्या की कोई स्त्री रेडी रहती थी, सोचो कितना उनका पूरा वो शादी का अरेंजमेंट्स, कितना इंस्टेंट, जैसे होता ना सर हर चीज इंस्टेंट, कॉफी इंस्टेंट टी, तो इंस्टेंट शादी का अरेंजमेंट्स उनका होता था, परशुराम जी आए और परशुराम जी घूम फिर के वापस आते थे, सोचो कितनी बार आए परशुराम जी यहाँ पे, 350 बार आए, और हर बार महाराज दशरथ का दर्शन कहाँ हुआ, शादी के मंडप में, शुभ मंगल सावधान चल रहे। तो इसके चलते महाराज दशरथ की इतनी पत्नियां हो गई थी, और फिर जो बाकी पुरुष थे अयोध्या के, अब राजा को देख रहे हैं कि राजा की 353 पत्नियां हैं, तो वो भी फिर कहते थे कि हमारी कम से कम और 2-3-4 तो हो सकती है ना, ऐसा राजा वैसी प्रजा, और 2-3-4 हो सकती है, तो स्त्रियां परेशान थी। और खुश कब हुई इतनी, क्यों हुई वो, जब रामचंद्र जी के विषय में, तो रामचंद्र जी मर्यादा, एक पत्नी व्रत इन्होंने लिया है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो अब ये सारे जो हमारे पति हैं, सारे जो पुरुष हैं, ये लोग मरता क्या ना करता, अभी रामचंद्र जी को फॉलो करेंगे, सब एक पत्नी व्रत बनेंगे ये लोग सब। हालांकि रामचंद्र जी ने वो एक पत्नी व्रत स्वयं के लिए लिया था, वो दूसरों को नहीं बोलते थे। जब वाली का वध हुआ उन्होंने किया, उसके पश्चात तारा तारा को रामचंद्र जी कहते हैं कि अब तुम सुग्रीव की पत्नी बनो, सुग्रीव के साथ रहो। और सुग्रीव की ऑलरेडी पत्नी थी, लेकिन तारा को रामचंद्र जी ने सुग्रीव के संरक्षण में भेजा। तो रामचंद्र जी देखो कितना बैलेंस्ड थे। इससे क्या समझ में आता है, क्या सीखने को मिलता है कि उन्होंने जितने कठिन से कठिन मर्यादा वो अपने ऊपर लागू की, और उसके साथ साथ अन्यों के लिए रामचंद्र जी फ्लेक्सिबल रहे। परंतु जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो सबसे ज्यादा पार्टियां मनाई गई स्त्रियों के गुट में, कि हाँ अब हमारे जो पति हैं वो उनकी अकल ठिकाने आएगी। तो रामचंद्र जी का त्याग, और उसके साथ साथ आप देखो केवल अकेले रामचंद्र जी का त्याग, उसका गुणगान नहीं हुआ है, उसके साथ साथ भरत का त्याग। अब देखिए भरत के लिए जो उनकी मां ने सब कुछ किया, और भरत के लिए क्या था, बहुत आसान था, सब कुछ अरेंज था। रामचंद्र जी तो निकल पड़े थे, और यहां पर दशरथ भी नहीं थे, दशरथ भी वो गुजर गए। रामचंद्र जी बड़े भाई निकल गए, दशरथ गुजर गए, तो अब तो क्या पूरा राज्य उनके पास था भोगने के लिए। परंतु भरत कहाँ गए, नंदीग्राम वहां गए, और वहां त्याग तपस्या का जीवन जिया उन्होंने। लक्ष्मण, लक्ष्मण का त्याग, लक्ष्मण का भी अभी अभी विवाह हुआ है उर्मिला, उनकी नवविवाहिता पत्नी, और अपनी पत्नी को सारे, और लक्ष्मण के ऊपर कोई बंधन नहीं था, उनको किसी ने नहीं कहा था, कैकेयी ने नहीं कहा था कि लक्ष्मण तुम भी वनवास के लिए जाओ, नहीं, वो उनका खुद का डिसीजन था, लक्ष्मण का खुद का डिसीजन था कि मैं जाऊंगा। तो फिर कोई पूछ सकता तो उर्मिला को क्यों नहीं लिया, उर्मिला को क्यों नहीं लिया लक्ष्मण ने? अरे भाई जब रामचंद्र जी सीता को लेके जा रहे हैं हाँ, तो फिर लक्ष्मण को भी उर्मिला को ले लेना चाहिए था ना, अकेला उर्मिला को 14 साल अकेला, अभी अभी उसकी शादी हुई उसको छोड़ के गए क्यों, सेवा में बाधा नहीं होनी चाहिए, सेवा में बाधा नहीं हो। और ऐसा नहीं 14 साल की कोई वो लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं, लक्ष्मण लेटर लिख रहे हैं आई एम मिसिंग यू उर्मिला, हाँ उर्मिला कैसी हो, हाँ तबीयत वगैरह ठीक है ना, सासू माँ सब ध्यान दे रही हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सोचिए उर्मिला का त्याग, रामायण के अंदर स्त्रियों का एक एक स्त्रियों का जो त्याग है, मंदोदरी का, उर्मिला का, कौशल्या का, हाँ यहाँ तक कि वाली की पत्नी, सुग्रीव की पत्नी, इन सब का भी त्याग, इनका भी गुणगान किया गया है। तो ये हुए राम लक्ष्मण भरत। अब शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के विषय में ज्यादा नहीं सुनते हम, परंतु शत्रुघ्न का जो त्याग है, हमारे कई वैष्णव आचार्यों ने शत्रुघ्न का त्याग उसे इतना ऊंचा दर्जा दिया है उस त्याग को। जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कर लौट आए, तो आने के पश्चात रामचंद्र जी, एक लवणासुर नाम का असुर था जिसे ठिकाने लगाना था, और ये मधुपुरी नाम यहां से पास ही है, पता नहीं किस दिशा में है, परंतु ये रामायण में वर्णन है कि मधुपुरी नाम का प्रांत जहां पर लवणासुर ने अपनी दहशत फैला रखी थी। तो रामचंद्र जी वो किसी को भी फोर्स नहीं करते थे, रामचंद्र जी ने पूछा कि कौन है, अपने भाइयों में सबसे पूछा कि कौन है जो वॉलंटियर करता है, है ना, हम लोग सेवा में पूछते हैं ना कौन वॉलंटियर कर रहा है इस सेवा के लिए, तो वैसे रामचंद्र जी ने पूछा कि कौन वॉलंटियर करेगा, क्योंकि और कैसा वॉलंटियर था कि वहां पर जाके लवणासुर का वध करना है और फिर परमानेंटली वहां पर सेटल होना है, अयोध्या से निकलकर उस मधुपुरी में जाकर सेटल होना है। तो ये प्रस्ताव प्रपोजल रामचंद्र जी ने सामने रखा कि कौन वॉलंटियर करेगा। शत्रुघ्न सामने आते हैं। अब देखिए शत्रुघ्न के विषय में कहा गया है कि जिन्होंने ऐसे शत्रुओं का हनन किया है जो किसी भी भाई ने नहीं किया। अभी बाकियों ने तो अलग अलग बड़े बड़े असुरों का वध किया, हनन किया शत्रुओं का, उन पर विजय प्राप्त की, परंतु शत्रुघ्न के विषय में कहा गया है कि शत्रुघ्न ने अपने अंदर का जो सबसे बड़ा शत्रु है अभिमान, उसके ऊपर विजय प्राप्त की। तो शत्रुघ्न वो आगे बढ़े जाने के लिए, वो बोले कि हां मैं जाऊंगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ये इनकी जोड़ी हुआ करती थी, राम और लक्ष्मण की जोड़ी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी, सुमित्रा के ये दोनों पुत्र कौन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो सुमित्रा ने वो पायसम का दो भाग खाया, तो इसलिए सुमित्रा ने यही इच्छा की खाते समय कि मुझे ऐसे दो पुत्र हों जो एक राम की सेवा में लगे और एक भरत की सेवा में लगे। तो इस भाव से माता सुमित्रा ने इन दो पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को। तो शत्रुघ्न उनका पूरा फोकस भरत की सेवा। अब देखिए रामचंद्र जी, सब लोग का फोकस तो अयोध्या में राम के ऊपर ही होना चाहिए ना, कि जो सबके जिसको कहते हैं सेंटर स्टेज, परंतु शत्रुघ्न का फोकस भरत। तो उन्होंने आगे बढ़कर ये स्वीकार किया कि मधुपुरी में जाकर लवणासुर का वध और फिर वहां पर जाकर सेटल होना, वो इसलिए कि यदि मैं आगे बढ़कर वॉलंटियर नहीं बनता हूं तो भरत को जाना पड़ेगा। और भरत जो 14 साल इतना प्रतीक्षा किए हैं प्रभु श्री राम का संग प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें वो संग नहीं मिलेगा। तो यदि मैं जाऊंगा तो भरत को संग मिलेगा, इसलिए वो उनकी भरत की खुशी में मेरी खुशी है। देखो ये है रामायण, जिसके अंदर इतनी सूक्ष्मता है, समर्पण की सूक्ष्मता देखिए यहां पर, कैसे संबंधों को निभाना है उसकी सूक्ष्मता देखिए इसके अंदर। और कभी शत्रुघ्न ने ये कहा नहीं किसी से भी कि मैंने वो स्वीकृति क्यों दी कि हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या छोड़कर, राम लक्ष्मण भरत को छोड़कर, इसे कहते हैं विरह भाव में सेवा करना। और कहीं पर आप शत्रुघ्न, यहां तक कि राम दरबार में भी वो नहीं है। राम दरबार में कौन है? राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी। राम दरबार में भी भरत और शत्रुघ्न नहीं है। बहुत रेयरली कभी कभी कोई पूरे राम परिवार का पिक्चर आता है उसके अंदर, मैंने बहुत रेयरली एक आध कोई ऐसा पिक्चर देखा होगा, परंतु अधिकांश राम दरबार जब भी बोला जाता है तो कौन है राम दरबार में? राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, जिसको बोलते हैं ना अनसंग हीरोज। ये शत्रुघ्न उन कैटेगरी में हैं जिन्होंने इस प्रकार का त्याग किया अपने भाई के लिए। इसे कहते हैं भ्रातृ प्रेम। तो एक तरफ ये अयोध्या नगरी जिसके अंदर ऐसा सूक्ष्म और गहरा भ्रातृ प्रेम, और दूसरी तरफ लंका। लंका में क्या किस प्रकार का भ्रातृ प्रेम चल रहा था? रावण ने कुंभकर्ण को उठाया युद्ध के बीच में, कुंभकर्ण जिसको सोने में इतनी रुचि और जिसने प्रण लिया था जो भी मुझे उठाएगा वो दुख भोगेगा। तो रावण ने बीच में नींद में उठाया कुंभकर्ण को, क्यों? मेरे लिए अपने प्राण न्योछावर करो। ये था ये रावण की लंका कि मेरे लिए बलि चढ़ो। कुंभकर्ण को भेज दिया मरने के लिए, और रावण की बहन शूर्पणखा जो भी जाकर झूठ वो सुनाने लगी रावण को, वो सारा झूठ था कि उसकी नाक कान क्यों काटी गई, कुछ उसने असलियत नहीं बताई। उसने जिसको कहते ना आजकल के जो वर्तमान पत्र हैं वो कैसे प्रस्तुत करते हैं, उस प्रकार की वो उस समय की वर्तमान पत्र पत्रिका शूर्पणखा, और उसने कैसे प्रस्तुत किया, तोड़ मरोड़ के मसाला मार के यहाँ वहाँ के खबरों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया रावण की ओर, क्यों, यूजिंग ब्रदर फॉर हर ओन लस्टी डिजायर्स, फॉर हर ओन रिवेंज। तो सबके रगों में वही खून था। ये पूरा परिवार किस चीज का बना हुआ, स्वार्थ का बना हुआ, ये पूरा रावण का परिवार स्वार्थ का बना हुआ था। इसलिए देखो रावण की लंका में जो भी कुछ रावण ने दिखाया सब कुछ शो ऑफ था। एक तो कुबेर से वो लूटी, ये रावण की थी नहीं ये लंका, वो कुबेर से लूटी हुई, और लूटने के पश्चात जो भी कुछ उसमें जो पुष्पक विमान था वो भी लूटा हुआ, सब कुछ लूटा हुआ माल। जैसे कि आप देखो ये जो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश म्यूजियम है, हाँ हम लोग ब्रिटिश म्यूजियम पहली दफा जब देखने गए तो वहां पर वो ब्रिटिश म्यूजियम में सजा के क्या क्या रखा हुआ है, इस देश का माल, उस देश का माल, ब्रिटिशर्स जिस जिस देश में जा जाके वहां का बहुमूल्य माल लूट के लेकर आए, और वहां पर लिखा हुआ है गिफ्टेड बाय दिस कंट्री, गिफ्टेड बाय दैट कंट्री। वो लोग क्या बेवकूफ थे कि अपने ऐसे ऐसे बहुमूल्य बेशकीमती चीजें वो तुमको गिफ्ट करेंगे जिनके ऊपर तुम शासन कर रहे हो गुलामी में, वो लोग क्या तुमको गिफ्ट करेंगे। तो लूटा हुआ माल और नीचे लिखा हुआ है गिफ्टेड गिफ्टेड गिफ्टेड, और उसको पूरे सारे लाइट वाइट लगाकर उसकी प्रदर्शनी, आप लोग टिकट निकाल कर देखिए, क्या देखिए, हमारा लूटा हुआ माल देखिए। चोर भी नहीं करते, जो साधारण चोर होते हैं वो भी अपने लूटे हुए माल की प्रदर्शनी नहीं करते। तो वहां पर ब्रिटिश म्यूजियम मतलब ये सब की प्रदर्शनी है। तो ये था रावण, सारा लूटा हुआ माल उसकी प्रदर्शनी, सोने की लंका बनाई हुई है। अब देखो सोना ये एक ऐसा द्रव्य है जिसको तिजोरी में रखकर या फिर उसका एक जो मूल्य है, तुम अगर सब जगह पर सोना सोना लगा दोगे तो फिर उसका उसकी कदर क्या रहेगी। इसलिए लंका में सोने की कोई कदर ही नहीं थी क्योंकि सब जगह ही सोना सोना है। जैसे मान लीजिए कि कोई दक्षिण भारत में गया है तो दक्षिण भारत में सब जगह पर आपको क्या मिलेगा, ये इडली डोसा चावल की चीजें। तो वहां पर चावल जो है वो सब जगह पर आपको चावल ही चावल मिलेंगे। हाँ अगर आपको कहीं पे रोटी खानी है तो बहुत ये दुर्लभ है वस्तु वहां पर रोटी। वैसे ही आप उत्तर भारत में आओ तो ठीक विपरीत, उत्तर भारत में अभी तो खैर सब कुछ सब जगह सब कुछ मिलता है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के टाइम सारे बंगाली जब वृंदावन में आए तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ब्रज रोटी खाने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो सब बंगाली चावल खाने वाले, और यहाँ पर चावल का नामो निशान नहीं, यहाँ पर खाली मोटी मोटी ब्रज की रोटियां खाने मिल रही थी। इसलिए आप जगन्नाथपुरी में देखो जो हनुमान जी का विग्रह है, वो जो मंदिर है ना कौन सा है, बेड़ी हनुमान, बेड़ी हनुमान, हनुमान जी वहां पर परेशान हो गए थे, नहीं रहना था उनको, क्यों, हनुमान जी रोटी खाने वाले, वो वहां पर जगन्नाथपुर में चावल ही चावल मिलता है। बोले क्या है ये, मेरे को अभी आपने देखा ना हनुमान गढ़ी में हम लोग गए, सब जगह बाहर लड्डू बेच रहे थे, वो हनुमान जी लड्डू खाने वाले और रोटी खाने वाले, वो ऐसे ब्रह्मचारी आज क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में भी अलग अलग वैरायटी है। कई हैं उनको रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, कई है वो रोटी के बिना उनका एक दिन भी नहीं जाएगा, हर दिन उनको रोटी चाहिए। कई हैं सब चलता है। हाँ वो किसी का अपराध नहीं करते, ना तो चावल का अपराध करते हैं, ना रोटी का अपराध करते हैं, ना बंगाली प्रसाद का अपराध करते हैं, ना गुजराती प्रसाद का अपराध करते हैं। वो लॉयल है, लॉयल अपने दृष्टिकोण से लॉयल है। तो फिर जैसे कि लंका की हमने चर्चा की, तो श्री वैष्णव संप्रदाय में ये कथा आती है कि विभीषण, जैसे कि रंगनाथ जी पहले इक्ष्वाकु वंश में प्रभु श्री रामचंद्र के रघुकुल वंश में रंगनाथ जी की पूजा हुआ करती थी, और फिर मेरे ख्याल से यहां अयोध्या में ही रंगनाथ जी हुआ थे, और यहां से फिर वो रंगनाथ जी श्रीरंगम गए। तो विभीषण वो रंगनाथ जी की पूजा किया करने के लिए लंका से आते थे, और क्योंकि वो उस परिवार में रावण के आसुरी परिवार के विभीषण, तो बड़े हट्टे कट्ठे और बड़ा ऊंचा कद उनका, तो जब वो पूजा करने के लिए आते थे तो वो हाथ में फूलों की टोकरी लेके आते थे विभीषण श्रीरंगम में। तो वो खुद इतने बड़े, रंगनाथ जी इतने बड़े, रंगनाथ जी का दर्शन किया आप लोगों ने? इतने विशाल रंगनाथ जी हैं, नहीं किया? चलेंगे हम लोग कभी रंगनाथ रंगनाथ जी के भी दर्शन करने चलेंगे। कनेक्टेड हैं सारे धाम, कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, सारे अवतार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे रंगनाथ जी अयोध्या से कनेक्टेड हैं, अयोध्या नासिक से कनेक्टेड है ना, और शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इस्कॉन के भक्त सब धामों से कनेक्टेड हैं। हम लोग नारद मुनि के अनुयायी हैं। नारद मुनि वो सारे अवतारों में उनका योगदान है। आप देखो नरसिंह अवतार में, आप देखो वामन अवतार में, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, चैतन्य महाप्रभु, सब अवतार में तो हम लोग नारद मुनि के फॉलोअर्स हैं। तो विभीषण वो रंगनाथ जी की आराधना करने के लिए अपनी फूलों की टोकरी लेकर आते थे, तो उनकी टोकरी इतनी बड़ी और उसमें फूल है, बड़े बड़े फूल, ऐसे बड़े बड़े फूल। तो श्रीरंगम का एक ब्राह्मण, उसने जब देखा कि ये कौन बंदा है इतना विशाल, और ये ऐसी ऐसी सामग्रियां लेकर आता है जिसको चढ़ावा बोलते हैं, ऐसे ऐसे चढ़ावे लेकर आता है, इतने बड़े बड़े पुष्प, इसकी ये फूल की बास्केट इतनी बड़ी है, कौन है ये? तो इस ब्राह्मण ने एक बार विभीषण से पूछा कि भाई कौन हो तुम? विभीषण ने बताया कि मैं लंकेश, वो सोने की लंका वहां से आते हो आप वहां के रहने वाले हो? जैसे होता ना कि अमेरिका का कोई आ जाए भारत में, जो ऐसे जगह पर जहां पर बहुत क्रेज है अमेरिका का, इतना सुना हुआ है, वो जब आके पूछता है कि कोई उसको पूछता है तुम कहाँ से आए हो? अमेरिका से आए हैं। अभी एक मेरे मित्र, वो अमेरिका में ही वो पले बड़े, लेकिन है वो भारतीय, कानपुर के हैं वो, श्रीवास्तव जी, अभी दीक्षित हैं। 15 साल से वो उधर न्यूयॉर्क के मंदिर में थे, तो उन्होंने फाइनली अब गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। तो उन्होंने जिन माता के साथ शादी करी वो रशियन है, तो उन डिवोटी हैं, तो उनको पहली दफा वो अपने गांव कानपुर लेकर आए, और अभी मुझे वृंदावन में वो मिले थे। तो सोचिए, ये हमारे तरह इंडियन स्किन कानपुर के, और इनकी पत्नी रशियन, तो कानपुर में वो शादी के लिए गए थे, अपने पत्नी को पहली दफ़ा लेकर गए कि इंडियन हमारे रिश्तेदार की किसी की शादी है तो शादी अटेंड। तो कह रहे थे कि पूरी शादी में जो बेचारे वर वधू थे उनके पास कोई देख ही नहीं रहा था, वीडियो कैमरा वाला, वो केवल पूरी शादी में सब लोग सेल्फी निकाल रहे हैं। अरे रशियन के साथ सेल्फी निकालने मिल रहा है, तो रशियन के साथ सेल्फी निकाल रहे थे, फिर उसके साथ बैठ के वो शादी का खाना खा रहे हैं, देख रहे हैं ये क्या क्या खाएगी, हम मदद कर रहे थे। तो वैसे ही ये श्रीरंगम का ब्राह्मण, इसने इतना सुन रखा था किसके बारे में, सोने की लंका के बारे में इतना सुन रखा था, तो ये इतना प्रभावित हुआ, तो इसने सोचा कि क्यों ना ये जो आ रहे हैं खुद इतने बड़े, इनकी बास्केट इतनी बड़ी है, तो ये जब फूल ऑफर कर देते तो इनकी बास्केट खाली होती थी, क्यों ना मैं इनकी बास्केट में छिपके बिना वीजा के लंका में प्रवेश कर जाऊं। इसको कहते हैं घुसपैठी है। तो एक दिन ये श्रीरंगम के ब्राह्मण ने किया क्या कि विभीषण अपनी पूजा वगैरह पूरा किए, सारे फूल जो लाए थे वो अर्पित कर दिए, ये इनकी बास्केट में जाके छुप गए। विभीषण इनको बास्केट के सहित लंका ले गए। वहां पर जाकर इन्होंने जब देखा, विभीषण ने देखा, अरे ये कौन कहाँ से आया, ये तो यहाँ का नहीं लगता है। तो फिर इन्होंने कहा कि अरे अरे मैं यहाँ पर कुछ सब देखने आया हूँ, कुछ आपसे भेंट मिल जाए। तो विभीषण कहे हाँ चलो, तुम इतनी दूर से आए, रंगनाथ जी के धाम से आए हो, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। तो विभीषण अपने घर में ले गए, महल में ले गए, अभी तो वो राजा हैं, महल में ले गए। तो ये और इनकी उत्सुकता बढ़ रही थी कि राजा कुछ भेंट देना चाहते हैं, और कहाँ के राजा हैं, सोने की लंका के राजा। तो विभीषण ने क्या दिया, विभीषण ने एक डिब्बी में लक्ष्मण के तीर का एक भाग रख रखा था और वो लोहे का था, वो लोहे का था, तो क्यों विभीषण ने उसे इतने संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि लंका में लोहा देखने को नहीं मिलता था, वो इतना रेयर, वो लोहा देखने को नहीं मिलता था, इसलिए सबसे रेयर चीज को उन्होंने लोहे को तिजोरी में रखा हुआ था, क्योंकि सब जगह तो सोना ही सोना है। तो जब इस श्रीरंगम के ब्राह्मण को भेंट के रूप में क्या दिया, लोहे का एक पीस। तो देखा अरे हमारे उधर तो लोहे लोहे सब जगह पे लोहे लोहे मिलता है, क्या भेंट दिया मुझे तुमने ये। तो इसे कहते हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, कि जो चीज हमारे प्रांत में या हमारे जहां पर हम पले बड़े हैं वहां पर प्रचुर मात्रा में मिलती है, उसकी हम कदर नहीं करते। इसलिए जब हम पाश्चात्य देश में जाते हैं वहां पर एक कार्यक्रम में यदि कोई अगर फेस्टिवल है, कोई ऐसे समारोह है, हमारे त्योहार है हिंदू त्योहार, तो वहां पर सारे हिंदू आ जाएंगे। मुझे याद है मैं स्लोवेनिया गया था, यूरोप में एक कंट्री है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी है लुब्लियाना, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इसका लुब्लियाना। तो हुआ क्या, मैं इस विजिट के बाद जब इंडिया आया तो मैं अपना जो बम्बई में बोरीवली है, बोरीवली में कार्यक्रम मैं किया करता था, तो वहां पर मैं जब अपने विजिट के बाद पहुंचा तो वहां के डिवोटीज पूछ रहे थे कि प्रभु जी आप कहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने कहा लुबलियाना। तो उन्होंने कार्यक्रम से पहले अनाउंस किया कि प्रभु जी अभी अभी लुधियाना से आए हैं। तो मुझे याद है उधर लुबलियाना में एक हमारे डिवोटी हैं, पूना के अच्छे भक्त हैं, दीक्षित हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा मंदिर है लुबलियाना में भी पंचतत्व का, बड़े पंचतत्व हैं वहाँ पर। सोचो पंचतत्व ही हैं और कोई नहीं है। पूरे लुबलियाना के लोग आते हैं और उनको वो लोग पूरा समझाते हैं कि ये पांच लोग कौन है, हाथ ऊपर कर कर जो खड़े हैं। तो ये भक्त साउथ इंडियन, ये प्रोग्राम के लिए घर पर बुलाए हमें, और सबसे पहले इन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया। तो प्रसाद के लिए इस स्लोवेनिया देश में लुबलियाना में केले के पत्ते में ये इडली सांबर वड़ा खिला रहे हैं। तो मैंने पूछा, इस देश में केले के पत्ते आपको कहाँ से मिले? तो उन्होंने कहा, प्रभु जी आप ध्यान से देखिए, वो प्लास्टिक का है, वो रीयूजेबल है। तो प्लास्टिक का केले का पत्ता एक, क्योंकि वो साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन जो केले के पत्ते में खाते हैं तो ज़्यादा उनके डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से बाहर आते हैं, वो मूड में आते हैं। केले का पत्ता है मतलब मूड में आते हैं। तो ऐसे ही उस मूड को क्रिएट करने के लिए प्लास्टिक का केले का पत्ता उन्होंने रखा हुआ था। फिर उसके बाद में जब प्रोग्राम हुआ तो प्रोग्राम में वो इंडियंस के लिए प्रोग्राम था, तो सात भारतीय आकर बैठे, सात हिंदुस्तानी, सात हिंदुस्तानी आकर बैठे। अब देखो हम लोग को हमारे इंडिया में या नासिक में जहां पर भी हम प्रोग्राम करते हैं तो एक अनाउंसमेंट करते हैं, कहां पर भी हाउस प्रोग्राम भी कम से कम 25-30 तो आ ही जाते हैं। हमारी गिनती वहां से शुरू होती है कि 50-60, वहां से गिनती शुरू होती है। यहां पर सात लोग बैठे हुए हैं, मतलब गर्दन भी ज्यादा घुमा नहीं सकते आप, बस यहां से यहां, यहां से यहां। और प्रोग्राम के बाद ये जो होस्ट, ये बोले, प्रभु जी आप विश्वास नहीं करेंगे क्या सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है आज। मैंने कहा, सक्सेसफुल प्रोग्राम कैसे? प्रभु जी सात लोग आए। मैंने कहा, तो मतलब ये ज्यादा है? हाँ प्रभु, पूरे स्लोवेनिया में केवल 9 इंडियंस हैं। और सब अलग अलग जगहों पर हैं और हम सब एक दूसरे को जानते हैं, 9 ही हैं। तो जरूर एक दूसरे को जानेंगे, जब भी कोई दिवाली होली ये सब जो अपने त्योहार हैं उसमें सारे 9 के 9 पूरे कंट्री से आ जाते हैं। तो मैंने जब सबको किया कि एक इंडियन प्रीचर आया है, हमारी तरह दिखने वाला है, इंडियन है और हिंदी भी बोलता है और अंग्रेजी भी बोलता है, एक दो इधर उधर की भी भाषा बोल लेता है, एक दो शब्द यहाँ वहाँ के भी, तो आ जाओ। तो देखो प्रभु, 9 में से 7 आए। तो मैंने कहा, वो दो वो लोग नहीं है स्लोवेनिया में, वो लोग इंडिया गए, नहीं तो वो भी आ जाते। तो सोचिए कि जहां पर जो वस्तु बहुत दुर्लभ है, तो एक ऐसे कंट्री में, जैसे मैं जब रशिया गया था सबसे पहली बार, तो रशिया में कोई इंडियंस प्रोग्राम के लिए नहीं आते। यूएस और यूके में कोई ब्रिटिशर प्रोग्राम के लिए नहीं आता है, सारे इंडियंस ही आते हैं प्रोग्राम के लिए। लेकिन रशिया वो देश में मैंने देखा कि कोई इंडियंस है ही नहीं, तो प्रोग्राम के लिए कौन आएगा? जितने आते हैं सारे रशियंस वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो भी ट्रांसलेटेड लेक्चर सुनते हैं। एक लाइन मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर बगल में जो प्रभु जी बैठे हुए हैं जिनको इंग्लिश आती है वो रशियन में ट्रांसलेट करते हैं उसको। तो यदि वो आधे घंटे का लेक्चर है तो वो 1 घंटे का बन जाता है। तो वहां पर एक आसानी थी, वहां पर मुझे उधर के ऑर्गेनाइजर्स ने बोला, प्रभु आप खाली आधे घंटे का लेक्चर प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर लेक्चर का टाइम 7 से 8 है तो आधे घंटे तो ट्रांसलेशन में जाने वाला है। और कई बार लंबे लंबे ट्रांसलेशन होते हैं, और रशियन भाषा समझ में नहीं आती तो लंबे लंबे ट्रांसलेशन होते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई मुद्दा कहा और जोर शोर से उसको इमोशंस डाल के एनिमेटेड तरीके से उसको कहा, फिर चुप हो जाओ, फिर बाद में वो ट्रांसलेट करेंगे और वो ट्रांसलेट होगा कुछ, उसको 10 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड लगेगा, उसके बाद वहां तक बात पहुंचेगी फिर करके सब लोग ऐसे। जैसे आपने कभी वो वीडियो देखा है जिसके अंदर वो जो साउंड है और एक्शन है दोनों की सिमेट्री नहीं होती, कि वो हीरो ने एक मुक्का मारा तो मुक्का मार दिया, वो गिर गया, फिर ढिशुम की आवाज आती है। तो रशिया में ये एक्सपीरियंस मुझे मिला था कि एक लाइन, फिर बाद में ट्रांसलेशन, फिर ऐसे। लेकिन वो प्रोग्राम में इतने उत्साह से सब लोग ट्रांसलेटेड क्लास को, अभी सोचिए कि यहां पर हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि सारी भाषा हमको समझ में आ रही है, पूरी हिंदी सब कुछ समझ में आ रही है, कोई ट्रांसलेशन नहीं चल रहा है, फिर भी डिनर भी नहीं खिलाया। पहले अनाउंसमेंट किया था कि डिनर पहले होगा, उसके बाद में सब लोग सोएंगे। अरे ठंड का मौसम है, सब लोग यहाँ पे जाड़े में गर्माहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम ठंडे कर रहे हो लेक्चर के से। और सोचो इसके ऊपर अगर ये क्लास को हम ट्रांसलेटेड क्लास कर दें, हाँ मैं मारवाड़ी में बोलना शुरू करूँ, और ऐसी मारवाड़ी किसी को समझ में नहीं आया, और उसको फिर हमारे जुगल किशोर जी पर वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, पता नहीं उनको भी समझ में नहीं आएगी फिर। तो ऐसे क्लास में कितना, मैंने वहां पे देखा क्या उत्साह से वो लोग बैठ के लेक्चर सुनते थे ऐसा। और जैसे ही लास्ट में जब मैंने खत्म किया तो वो लोग बैठे रहते थे कि अब यहां पे हमारा अनुभव क्या है कि क्लास अगर थोड़ा लेट हो रही है तो अपने आप कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आसन हल्के होते रहते हैं। लेकिन वहां पर वो बैठे हुए थे, तो फिर मैंने बोला कि कोई महाप्रसाद या प्रेयर्स नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि महाप्रसाद कोई प्रसाद ही बांटता नहीं है करीब। वो भी बुधवार का ही प्रोग्राम था, और बुधवार के प्रोग्राम में वहां पर करीब 500 रशियंस बैठे हुए हैं, ट्रांसलेटेड लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर के बाद कोई प्रसाद नहीं उनके पास। वो जहां जहां पर उनका वो हॉल बनाया होता उधर कोई किचन का अरेंजमेंट नहीं है, और परमिशन भी नहीं था उनको कुछ कुकिंग करने का और कुछ बांटने का, खाली हॉल यूज कर सकते हो तुम्हारे लेक्चर के लिए, कीर्तन के लिए, उसके बाद सब साफ सुथरा होना चाहिए, वापस निकल लो अपने अपने घर पे। तो जैसे हुआ लेक्चर, कोई कीर्तन हुआ, कोई महाप्रसाद या प्रेयर्स नहीं, कोई महाप्रसाद नहीं, सब लोग अपने गाड़ी में बैठ के गए, वर्किंग डे। ऐसे हर हफ्ते। तो मैं ये बता रहा हूं कि विभीषण उनके लिए सोने की लंका, सब जगह पर सोना ही सोना, इसलिए उनको इसके पीछे क्या, ये लोहे का जो लक्ष्मण के तीर का लोहे का टुकड़ा, इसको वो इतना बहुमूल्य तिजोरी में रखे हुए थे। तो ये है अयोध्या की संस्कृति, जहां पर इन 5 तत्वों से अयोध्या बना, और ये बुनियाद इस नगरी की। अब हम कल से चर्चा करेंगे कि जब हमें राम के प्रति आकृष्ट होना है, प्रभु श्री राम को अप्रोच करना है, तो राम को अप्रोच करने के क्या क्या तरीके हैं, और उसमें रामायण की, रामायण के जो प्रसंग है, हम किसी सीक्वेंस में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस में जाएंगे तो उसके लिए कम से कम 9 दिन चाहिए पूरी सीक्वेंस में, अगर वो भी तेज रफ्तार से जाएं तो पूरी हो सकती है रामायण। यहाँ तक कि वाल्मीकि मुनि जब उन्होंने रचना की पूरी रामायण की, तो भरद्वाज ऋषि से पूछा कि कितने श्लोक हो गए, वो कहे 24,000 श्लोक हो गए। 24,000 श्लोक, वाल्मीकि मुनि वो थोड़ा सा सहम गए कि इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा, 24,000 श्लोक का ग्रंथ कौन पढ़ेगा। तो इसलिए रामायण की महिमा क्या है, राम नाम, राम के धाम, राम का रूप, राम की लीलाएं, ये सब कुछ रामायण में समाहित है। तो हम कल से उसे सुनना प्रारंभ करेंगे। आज का दिन, क्योंकि पहला दिन हमारा अयोध्या में, इसलिए आज हमने फोकस किस पर रखा कि ये अयोध्या नगरी का महत्व क्या है, इस अयोध्या नगरी का महत्व क्या है हम वैष्णवों के लिए, राम भक्तों के लिए, जो इन पांच तत्वों से अयोध्या नगरी बनी हुई है। फिर से दोहराइए, यज्ञस्व दानस्य दीक्षस्व, उसके पश्चात तपस्या और त्यागस्य, इन पांच तत्वों से ये अयोध्या नगरी बनी हुई। तो हम जब परसों इस अयोध्या नगरी से प्रस्थान करेंगे तो हम अपेक्षा करते हैं कि इन पांचों को हमारे जीवन में उतारें और अयोध्या से ये भेंट लेकर हम अपने अपने जगहों पर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरे देव।
श्रीमान शिक्षाश्रम प्रभु की जय।